आशिका अभिमान के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में आई हुई थी। आशिका पहले से ही अभिमन्यु के इरादे जानती थी, तभी उसने पहले ही खून देने से मना कर दिया था। वहां जाकर अभिमन्यु से बात करने के बाद आशिका का शक सही साबित हुआ। हालांकि अभिमन्यु आशिका को यही समझा रहा था कि वो अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मंजूरी दे दे, लेकिन आशिका इसके लिए तैयार नहीं थी। अभिमन्यु ने आज पहली बार आशिका की आंखों का रंग देखा था। उसे देखने के बाद तो किसी तरह के डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं थी। अभिमन्यु पहले से जानता था कि आशुतोष और काजल के जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और उन दोनों की आंखें आशुतोष की तरह दिखती थी। आशिका की आंखों का रंग भी वैसा ही था। न जाने क्यों, सब कुछ सच पहले से जानने के बावजूद आशिका इस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं थी। शायद वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी थी कि उसे फिर से पीछे पलटकर नहीं देखना था। अभिमन्यु ने आशिका के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की। आशिका अभिमन्यु से बात करके एक कमरे में गई ही थी कि किसी ने पीछे से उसके मुंह को बंद किया और फिर उसे बेहोश कर दिया था। आशिका कुछ समझ पाते उससे पहले वो उसे बेहोश करने वाले आदमी के कंधे पर पड़ी हुई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आशिका को अपनी गोद में उठाकर ज़मीन पर लेटा दिया था। उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और आशिका का ब्लड सैंपल लेकर एक छोटी सी शीशी में भर लिया था। वो पृथ्वी था। रियली सॉरी आशिका, पर तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। मैंने मिस्टर राजवंश को प्रॉमिस किया था कि ये मामला मैं संभालने वाला हूँ और मैंने आज तक उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे उन्हें कभी हारते हुए नहीं देखना है, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो या पर्सनल वे में, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। आशिका का ब्लड सैंपल लेने के बाद पृथ्वी ने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था ताकि आशिका को बेहोश देखकर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। अभिमन्यु खुद इस बारे में नहीं जानता था कि पृथ्वी ने आशिका का ब्लड सैंपल लेने के लिए उसे बेहोश किया है। पृथ्वी उस सैंपल के साथ सीधा लैब पहुंच चुका था, तो वहीं अभिमान आशिका को ढूंढ रहा था। पिछले आधे घंटे से वो उसे नज़र नहीं आ रही थी। उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया था और अब उसे वहां से वापस जाना था। आशिका को ढूंढते हुए अभिमान जब हर एक कमरे को देख रहा था, तब उसकी नज़र उस कमरे की तरफ गई जहां आशिका पिछले 40 मिनट से बेहोश पड़ी हुई थी। उसे ज़मीन पर देखकर वो जल्दी से दौड़कर उसके पास गया। ऐश ऐश, क्या हुआ तुम्हें ऐश, उठो। अभिमान आशिका का हाथ पकड़कर छिछोड़ने लगा। आशिका अभी भी होश में नहीं आ रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर डॉक्टर के पास लेकर आ गया था। अभिमान को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। जब उसने अभिमन्यु और आशिका को साथ में देखा तो न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था और तभी से वो आशिका को इग्नोर कर रहा था। देखिए ना डॉक्टर, इसे क्या हो गया, ये अभी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अभिमान ने वहां लगे बेड पर आशिका को लेटा दिया था। वहीं अभिमान के चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद ईशिका और अभिमन्यु भी वहां पर पहुंच गए थे। अभिमन्यु ने भी काफ़ी समय से आशिका को नहीं देखा था। ये कहाँ थी, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ होगी, अभिमन्यु ने अभिमान की तरफ देखकर पूछा। नहीं, मैंने आखिरी बार आप दोनों को साथ में देखा था। पता नहीं उस कमरे में क्या कर रही थी और ये बेहोश कैसे हो सकती है, अभिमान ने परेशान स्वर में कहा। उसकी नज़रें अभी भी आशिका पर ही टिकी हुई थी। डॉक्टर आशिका को चेक कर रहे थे। इस बीच उसे होश भी आ गया था। उसे बेहोश करने के लिए पृथ्वी ने कोई स्ट्रांग दवाई का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बस उसे 5 से 10 मिनट के लिए बेहोश करना चाहता था। अभिमान जल्दी से उसके पास गया और उसे बैठने में मदद की। क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई, कहीं तुमने सच तो नहीं कहा था कि तुम्हारे अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, अभिमान ने आशिका की तरफ देखकर पूछा। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। नहीं, मैं अपने आप बेहोश नहीं हुई थी, आशिका ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं उस रूम में गई तब किसी ने मेरे मुंह को बंद कर लिया था और उसने मुझे शायद कोई इंजेक्शन दिया था। आशिका ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। अभिमान ने वहां पर देखा तो आशिका की गर्दन पर एक लाल निशान था और हल्का सा सूखा खून भी लगा हुआ था। आशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया था। आशिका को पहले यही लगा था कि ये अभिमन्यु ने करवाया है, लेकिन अब वो मना कर रहा था तो उसे इतना यकीन था कि अभिमन्यु कभी झूठ नहीं बोल सकता। वहीं आशिका और अभिमन्यु के इस तरह आंखों ही आंखों में बात करने पर अभिमान तुरंत आशिका से दूर हो गया था। अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम कल भी यहाँ से जा सकते हैं, तुम रेस्ट कर सकती हो, अभिमान ने अपने गुस्से को साइड रखकर पूछा। हाँ ऐश, अभिमान बिल्कुल सही कह रहा है, ईशिका ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। तुम हमारे साथ घर पर रुको, ये सब अभिमन्यु हैंडल कर लेगा, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ ईशिका, और मुझे मुंबई ही जाना है, बस हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है, पेन किलर लेने से ठीक हो जाएगा, आशिका ने जवाब दिया। सबके समझाने के बावजूद आशिका ने वहां रुकना सही नहीं समझा। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट भी थी। मेडिसिन लेकर आशिका अभिमान के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। वो सीट पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अभिमान ड्राइव करते हुए बार बार उसकी तरफ देख रहा था। हालांकि वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अभिमान ने मन ही मन कहा, ऐसा क्या है तुम्हारी आंखों में जो तुम मुझे देखने नहीं दे सकती? और चाचू के सामने तुमने अपने लेंस उतार दिए थे। क्या तुम उनके साथ इतनी कंफर्टेबल हो कि तुम्हें उनसे कुछ कहने के लिए बोलना तक नहीं पड़ता और आंखों ही आंखों में सब समझ जाती हो? तुम्हें मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ आते ऐश? ऐसा नहीं था कि उसे अभिमन्यु और आशिका को लेकर शक हो रहा था, बस उसे बुरा लग रहा था कि आशिका उसके बजाय अभिमन्यु के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी। एयरपोर्ट पहुंचने पर अभिमान ने आशिका को जगाया और फिर उन्होंने मुंबई के लिए फ्लाइट ली। वहीं दूसरी तरफ आशी देर तक सो रही थी। उसकी नींद दोपहर के वक्त तब टूटी जब उसके पास तृप्ति का कॉल आया। कहाँ गायब हो? कब से कॉल कर रही हूँ? क्या तुम्हें आगे की प्लानिंग नहीं करनी? तृप्ति ने कॉल रिसीव करते ही कहा। तृप्ति को आशी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था, फिर चाहे वजह जो भी रही हो। जब भी वो उससे मिलने आती और दोनों साथ में घूमते तो तृप्ति को लगता कि उसने पिछले इतने सालों में उसके बिना जो दिन बिताए थे वो उसकी भरपाई कर रही है। मैं नहीं आ सकती हूँ, कल भी यज्ञ ने हम दोनों को देख लिया था और हमारी फोटोज तक ले ली थी। ये तो शुक्र है जो अभिमान और मेरी शादी टूटने के इतने टाइम बाद भी घर वालों को ये लगता है कि मैं उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। उन्होंने मुझे डांटकर छोड़ दिया, साथ ही मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि मैं आपसे ना मिलूं। अब हमें फोन पर ही अपनी आगे की प्लानिंग करनी होगी, आशी ने मायूस स्वर में जवाब दिया। काजल के बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह ट्रबल मेकर हैं, तृप्ति ने मुठियां कसते हुए कहा। उसे यज्ञ पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने को नहीं मिल रहा था। आशी ने कुछ पलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर शांत आवाज में बोली, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। काश आप मिस्टर आशुतोष सिंघानिया की वाइफ होती तो कितना अच्छा होता। हम एक घर में साथ में रहते और मुझे इस तरह आपसे छुपकर नहीं मिलना पड़ता।
आशी ने इस वक्त भले ही अपने इमोशंस बताए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसने तृप्ति के जले पर नमक छिड़का था। उसका हमेशा से सपना था कि वो आशुतोष के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तब की इतनी मेहनत के बाद भी आज उसकी जिंदगी अच्छी नहीं थी। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मुझे भी सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मेरी जगह उस काजल को नहीं दी है। वो इसके लायक भी नहीं है। चिंता मत करो, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें उस मुसीबत की जड़ आशिका को हटाना होगा, तृप्ति ने हल्की सख्त आवाज में कहा। हाँ, आपने उस बारे में कुछ सोचा है? आशी ने पूछा। हाँ, मैंने पूरा प्लान कर लिया है, तृप्ति ने जवाब दिया, जिस पर आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अपना प्लान बताते हुए तृप्ति ने आगे कहा, मैंने मिस्टर स्काई को एक दो दिनों के लिए राजवंश फैमिली से दूर रहने के लिए कहा है। हमें उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जितना टाइम देंगे उतना ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। बस एक बार मिस्टर स्काई आशिका को यहाँ से ले जाने की सारी तैयारी कर लें, उसके बाद मैं आशिका को कॉल करके अपने पास बुला लूंगी, ये बोलकर कि मिस्टर स्काई ने मुझे किडनैप कर लिया है और वो मुझे मारना चाहते हैं। आपने उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया है, ऊपर से आकाश अंकल भी उसे लेकर गलत इरादे रखते हैं। क्या ऐसे में वो आएगी आपको बचाने के लिए? आशी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसे तृप्ति के प्लान पर शक हो रहा था। बेशक आएगी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसकी कमजोरी हूँ। चाहे वो ऊपर ऊपर से कितना भी दिखाए कि वो मुझसे नफरत करती है, मैं उसे खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि आखिरी बार मिलने के लिए बुलाऊंगी। मैं उसे ऐसे ही दिखाऊंगी जैसे मैं उसे मारने वाली हूँ, और उसे हासिल ना कर पाने का बदला मिस्टर स्काई ने मुझसे लिया है। बस मुझे मिस्टर स्काई के अगले मूव का इंतजार है, जब वो आशिका को इस देश से ले जाने की पूरी तैयारी कर लेंगे। हमें 2-3 दिन तो रुकना ही होगा, तृप्ति ने जवाब दिया। हालांकि आशी को अभी भी तृप्ति के प्लान पर शक था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया था। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद आशी ने कॉल कट कर दिया था। वो बस ये सोचकर ही खुश थी कि जल्द ही आशिका अभिमान से दूर हो जाएगी। आज नहीं तो कल अभिमान उसे सबके प्रेशर में आकर एक्सेप्ट कर ही लेने वाला था। दूसरी तरफ शाम के वक्त अभिमान और आशिका वापस मुंबई पहुंच चुके थे। जैसे ही वे घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने को हुए, निशा हमेशा की तरह दरवाजे पर अभिमान का इंतजार कर रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी। आशिका को लगा कि अभिमान अभी भी निशा को इग्नोर करके उसके साथ आएगा, लेकिन निशा को देखकर अभिमान ने आशिका से कहा, तुम रूम में चलो, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ। निशा के चेहरे पर राहत के भाव देखकर आखिर अभिमान ने उससे बात करने के लिए हाँ कह दी थी, तो वहीं आशिका के चेहरे के भाव गहरे होने लगे थे। पूरे रास्ते में अभिमान ने उससे बिल्कुल बात नहीं की थी। वो इस बारे में अभिमान से बात करना चाहती थी, लेकिन अभिमान ने उसे वहीं पर छोड़ा और निशा से बात करने के लिए चला गया था।